शांति। अभी हमारा जो सेशन है उसमें हमें आदरणीय सूर्य भाई जी इस इंस्टीट्यूशन के हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। आदरणीय सूर्य भाई जी एक महान तपस्वी है, राजयोगी है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो राजयोग सिखाया जाता है उसको किस प्रकार से अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है और कैसे राजयोग के माध्यम से हर प्रकार की समस्याओं के ऊपर मात करना है, उसको ओवरकम करना है, इसका आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से 1964 से जुड़े हुए हैं और 1968 से आप इसे माउंट आबू में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय में आप हमारे जो यहाँ तीनों ही कॉम्प्लेक्सेस हैं, शांतिवन, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, वहाँ के किचन के आप इंचार्ज हैं। तो हम लोग जो भी भोजन करते हैं वो इनके देखरेख के अंदर ही वो बनता है। आप सभी को पसंद है यहाँ का भोजन? तो आप, और यहाँ की एक विशेषता है भाई साहब, जब भी भोजन बनता है तो किचन में जाके खास मेडिटेशन करते हैं। वैसे भी सभी भाई लोग मेडिटेशन में रह के ही करते हैं, लेकिन भाई साहब खास योगदान देते हैं जिससे कि वो और भी प्योर बनता जाए और जो भी भोजन करने वाले हैं उनको शक्ति मिले, इसका उनका खास मेरा ध्यान रहता है। तो मैं अभी भाई साहब से अनुरोध करती हूँ कि आप इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। और उससे पहले मैं अभी से अनुरोध करती हूँ कि जो भी भाई बहने पीछे बैठे हैं वे कृपया आगे आगे बैठेंगे और अपने मोबाइल स्विच ऑफ रखें या बहुत जरूरी है तो साइलेंस पे रखें। बाकी सभी को बहुत डिस्टर्बेंस होता है तो कृपया मोबाइल साइलेंस पे रखो। वो सब अपने आप समझ लेंगे, यहाँ जब शांति ही सिखाई जाती तो आप इतना सब समझ लेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। अब तो कम से कम कोई बात नहीं करेगा, मैं ही करूंगा आप सबसे बात, और आपको अवश्य इंटरेस्ट आएगा क्योंकि आप सभी रात को भी सारे दिन के प्रोग्राम अटेंड करके यहाँ आए हैं। इसे सिद्ध है कि आपको कुछ विशेष रुचि तो है ही। हमारा भी ये लक्ष्य होता है कि आप सभी जो बुद्धिमान भाई बहने यहाँ आए हैं यहाँ से कुछ ऐसी बातें सीख कर जाएं जो न केवल आपके कार्यों में काम आए लेकिन आप संसार को भी कुछ दे सको। मैं जानना चाहूंगा आप में से कितने ऐसे भाई बहने हैं जो संसार को कुछ देना चाहते हैं, जरा हाथ उठाएंगे ईमानदारी से। सब ग्रेट, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो देखिए, संसार की जो वर्तमान स्थिति बन गई है इसके पीछे कुछ कारण जो आपको यहां समझ में आ रहे होंगे, और आज मैं आपको एक ऐसी चीज से परिचित करा रहा हूं, केवल इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इतिहास नहीं लेकिन कुछ बहुत सुपर क्वालिटी की बातें जिनको सुनकर आप निश्चित रूप से आनंदित होंगे और अपने जीवन की धारा को एक नया मोड़ दे सकेंगे। तो एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप सबसे पहले पूछना चाहूंगा, इस संसार को बदलने की शक्ति किसमें है? और सोच के बताओ जरा। केवल सर्वशक्तिवान में, उसमें जो इस संसार का स्वयं क्रिएटर है। यहां आकर जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है ये तो बहुत अल्प ज्ञान दिया जा रहा है, अभी बिल्कुल प्राइमरी नॉलेज। लेकिन अगर इस ज्ञान की आप अच्छी तरह स्टडी करें तो आपको सृष्टि के सभी रहस्य समझ में आ जाएंगे। तो आज मैं आपके सामने स्पष्ट करने जा रहा हूं भगवान कैसे इस संसार को बदल रहे हैं, हम उसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं और हम क्या परमात्म मिलन कर सकते हैं। मुझे याद आई एक बात कि स्वामी विवेकानंद जब वो नरेंद्र थे तब जिसके पास भी जाते थे उससे एक प्रश्न करते थे, तुमने भगवान को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस से भी उन्होंने यही क्वेश्चन किया कि क्या आपने भगवान को देखा है, और रामकृष्ण परमहंस ने तुरंत उत्तर दिया, देखा ही नहीं, तुम्हें भी दिखा सकता हूं। ये पहला महावाक्य था जिसने नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनने की पहली प्रेरणाएं दी। तो आज हमसे भी यहाँ बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछा करते हैं, तुमने भगवान को देखा है? हमारे उत्तर उससे भी आगे के हैं कुछ, जिसका थोड़ा सा दिग्दर्शन आपको आज हम कराना चाहेंगे। भगवान सृष्टि को कैसे बदलते हैं, और यहाँ आप सुन रहे होंगे कि ये युग परिवर्तन का कार्य ही चल रहा है। युग परिवर्तन परमात्मा के सिवाय कोई नहीं कर सकता। जो आप में से बहुत अच्छे चिंतक हैं, चिंतन करें, हर 10 साल में संसार की संपूर्ण कल्चर बदल रही है। पिछले 40 सालों से, 4 दशकों से, हर एक दशक में संसार की संपूर्ण कल्चर बदल जाती है। मैं ये कह सकता हूं मानो युग बदल जाता है। अब इस संपूर्ण युग को बदलना है। वर्तमान स्थिति जो कुछ है उसे मेरे से ज्यादा आप सब परिचित हैं, आप उस फील्ड में कार्यरत हैं, आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, कैसे जाते हैं। मेरे पास जो कुछ होता है उसके अनुसार मैं जानता हूं कि संसार में मानसिक दुख, रोग, अशांति, टेंशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जितनी तेजी से विज्ञान उन्नति कर रहा है उतनी ही तेजी से मनुष्य के मन की गिरावट उन्नति कर रही है। इसलिए जहां तहां ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो अपने जीवन में असंतोष की अग्नि में जल रहे हैं, जिनको अनेक तरह की पीड़ाएं हैं। कल ही मेरे पास एक बहुत सीनियर ऑफिसर आए, मुझे कहा गया कि भाई ये एक DGM बहुत बड़ी कंपनी के आए हैं, आप जरा उनसे मिल लो। मैंने कहा चलो मिल लेते हैं। तो देखा दो वो कपिल और एक उनका बच्चा, 11 साल का, केवल 11 साल का। स्थिति ऐसी दयनीय थी कि वो एक बच्चा 11 साल का, उसको निरंतर पूरे शरीर पर खुजली ही खुजली, जो न सोए न सोने दे, तीन लोग और तीनों ही जैसे अति पीड़ित, बहुत दुखी बेचारे। हंसते भी थे तो दिल से हंसी नहीं निकलती थी। मैं सोचने लगा देखो धन, पद, पोजीशन कितनी वैल्यू रखता है आजकल, जहां जीवन में संतोष नहीं है। तो मैं शुरू करता हूं बहुत ब्रीफली आपके सामने ये बात रखूंगा, और मेरे मन में लक्ष्य है कि दोनों चीजों के बारे में आपको स्पष्टीकरण हो जाए। एक बाबा जिसको आप, जिसका चित्र फोटो यहाँ देख रहे हैं, वो कौन थे, और एक वो जिसने ये कार्य किया। ये जो हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है इसको हम आम भाषा में एक छोटा सा नाम देते हैं यज्ञ। ये यज्ञ भी है, ज्ञान यज्ञ है। तो बात शुरू होती है 1935 से। बाबा जिनका नाम दादा लेखराज था, जो एक प्रसिद्ध ज्वेलर थे, जिनका कार्य बॉम्बे और कलकत्ता में बहुत अच्छी तरह चलता था, बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत सुंदर इनका व्यापार था, राजाओं महाराजाओं से इनका काम रहता था सदा ही। 35 से इनको कुछ दिव्य अनुभूतियां, कुछ डिवाइन इंसाइट, कुछ स्पिरिचुअल फीलिंग्स प्रारंभ हुई, और इनको इस संसार की तरफ से वैराग होने लगा। बहुत धन कमाने वाले, आज तो देखिए लाखों का ज्यादा महत्व नहीं रहा, उस समय लखपति बहुत इम्पोर्टेंट के लोग होते थे, बड़ी इम्पोर्टेंस होती थी उनकी, तो लाखों में कारोबार करने वाले उस समय 35 में उनका चित्त संसार से वैराग की ओर चलने लगा। और सबसे पहले उन्हें दर्शन हुए विष्णु चतुर्भुज के, और कुछ दिव्य वाणियां, कुछ डिवाइन वॉयस जिसको आकाशवाणी शास्त्रों में कह दिया गया है, वो उनको सुनाई दी। जिन जिन देवी देवताओं की वो भक्ति करते थे, जिनके लिए उनकी भावना थी, उन्होंने 35 और 36 के बिगिनिंग में उन सब के दर्शन किए, साक्षात्कार किए। उनका चित्त और इंट्रोवर्ट हो गया, और ये 36 का ईयर उनके लिए बहुत ही एक चेंजिंग पीरियड था, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड था। उन्होंने दो बड़े साक्षात्कार किए, एक ही संसार के महाविनाश का। उन्होंने वो सब देखा जो आने वाले कुछ सालों में होने जा रहा है, कि आकाश से अग्नि बरस रही है। उस टाइम एटम बॉम्ब्स का नाम अभी प्रसिद्ध नहीं हुआ था, कि अग्नि के गोले गिर रहे हैं, ऊपर से भूकंप हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो ताश के पत्तों की तरह ढह रही हैं, तूफान सागर उछल रहा है। और उन्हें आवाज आने लगी, दिव्य वाणी आने लगी, कि ये संसार अब समाप्ति की ओर जा रहा है। इसके बाद उन्हें कुछ पता नहीं चला। उसके बाद एक बहुत सुंदर घटना उनके जीवन में घटी। इन्होंने कई गुरु किए हुए थे, कराची में इनका घर था, तो कराची में गुरु को बुलाया हुआ था, उसका सत्संग चल रहा था, लेक्चर हो रहा था, और ये भी सामने आगे आगे बैठे थे। अचानक इनको फीलिंग हुई और ये वहां से उठे और अपने कमरे में चले गए। इनकी पुत्र वधु ने जब ये देखा तो 2-3 मिनट के बाद वो भी गई कि दादा ऐसे कभी गुरु के सत्संग से छोड़कर नहीं जाते, तबीयत खराब हुई है, कुछ गया हुआ है, मैं देख के आऊं। तो ये सीन बहुत वंडरफुल था। यहां से शुरुआत होती है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की। जब वो इनकी पुत्र वधु जिनका नाम राधा था, वो उस कक्ष में पहुंची तो उन्होंने क्या देखा कि वो बड़ा रूम लाल प्रकाश से भरा हुआ है। बाबा बैठे हैं और बाबा के नैनों से जैसे लाल प्रकाश निकल रहा है और कुछ ध्वनि आ रही है, शिवो अहम शिवो अहम, अहम चतुर्भुज तत्वम, ये संस्कृत के शब्द हैं। तो कुछ देर ये सीन चला, बिल्कुल डिविनिटी हो गई वातावरण में। वो भी खड़ी खड़ी देखती रह गई, न कुछ सोच सकी न कुछ कर सकी, और ये सीन 5-7 मिनट चला। केवल उसने देखा, उसके बाद बाबा को जैसे यहाँ का भान हुआ, उसे लगा मैं कहाँ आ गया, उधर तो गुरु का भाषण चल रहा है। उसको आवाज आने लगी, अब मुझे तुम्हारे द्वारा इस धरती पर सतयुग की स्थापना करनी है। अब ये एक नई बात थी, वो कहां जाने सतयुग क्या होता है, सतयुग की स्थापना कैसे करनी है, कौन करेगा। उसने सोचा कि गुरु ने मुझे ये डिवाइन इंसाइट दी है। सत्संग के बाद वो गुरु के पास पहुंचे, चरण छुए और कहा, महाराज आपने मुझ पर बहुत कृपा की है, मुझे ये दिव्य एक्सपीरियंस दिया है। लेकिन वो जल्दी समझ गए कि गुरु इस बात से अनभिज्ञ हैं। यहां से उनके जीवन में संपूर्ण परिवर्तन हो गया। सत्संग उन्होंने प्रारंभ किया, उससे पहले वो गीता आदि ये सब जो ग्रंथ हैं हमारे, इनका अध्ययन करते थे। लेकिन यहां से कुछ और शुरू हुआ, जो बात अंडरलाइन करके मुझे आपके समक्ष रखनी है। निराकार परमात्मा शिव ने उनके तन में प्रवेश करके उनके मुख के द्वारा ज्ञान देना प्रारंभ किया, ये कार्य शुरू हुआ। तब से और अब तक, मैं बीच की कहानी तो सुनाता ही हूँ, तब से और अब तक ज्ञान के सागर परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश करके उनके मुख से ज्ञान दिया और ज्ञान देकर अनेक आत्माओं को पवित्र बनाया। हमने स्वयं देखा, मैंने भी देखा उनको। मैं 68 में यहाँ आ गया था। मैंने देखा कि भगवान कैसे मनुष्य आत्माओं को पढ़ाते हैं, वो प्यार का सागर है, तो वो कैसे अपनी संतानों को प्यार देता है, वो सर्वशक्तिवान है तो उसकी शक्तियाँ क्या हैं, वो पतित पावन है तो कैसे वो सभी को पावन बनाते हैं। ये हमने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से उसके महावाक्य सुने, हमने ही नहीं बहुतों ने सुने, हजारों लाखों ने सुने। 36 पूरा हो गया, 37 में प्रवेश किया और बाबा ने एक छोटा से ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जिसको उस समय नाम दिया गया था ओम मंडली, क्योंकि बाबा ओम की ध्वनि लगाया करते थे और जैसे ही बाबा ओम की ध्वनि लगाते थे शिव उनमें प्रवेश कर लेते थे और जिस पर वो दृष्टि डालते थे वो ट्रांस में चले जाते थे। कोई श्री कृष्ण को देख रहा है, कोई राम के दर्शन कर रहा है, कोई विष्णु के दर्शन कर रहा है, किसी को महादेव दिखाई दे रहे हैं, जो जिसके भक्त थे अपने इस देवों के वहां साक्षात्कार होने लगे। तो सारे सिंध में, कराची में विशेष रूप से बहुत ज्यादा प्रभाव छाने लगा कि दादा के पास कोई ऐसी शक्ति है। लोगों ने सोचा दादा कलकत्ते से कुछ ऐसी चीज सीख के आए हैं कि जिसको देखते हैं वो ध्यान में चला जाता है, वो ट्रांस में चला जाता है। बाद में इसकी विधिवत स्थापना कर दी गई और नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी स्वरीय विश्वविद्यालय। ये काम 37 में हुआ। बाबा ने अपनी सारी संपत्ति एक ट्रस्ट बनाकर ट्रस्ट को समर्पित कर दी, संपूर्ण जैसे संन्यास हो गया बाबा का। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा और ये कार्य प्रारंभ हुआ। तब से 14 वर्ष 1950 तक बाबा ने सभी को सोल कॉन्शियस होने की गहन तपस्या कराई, प्रिपेयर किया, क्योंकि उन्हें संसार में भेजना था, उन्हें भारत में जहां तहां भेजकर ये गोल्डली मैसेज दिलवाना था। 14 साल तक उनसे तपस्या कराई, मैं ये देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ, भगवान की संतान हूँ, उससे कैसे योग लगाया जाए, राजयोग सिखाकर सभी से 14 साल उनको तपस्या करा के मैं च्योर किया। पार्टीशन हो गया 1950 में, तब ये लोग कराची में थे, पहले हैदराबाद से शुरू हुआ था, फिर कराची में आए। बाबा ने शिव बाबा, अब हम शिव को भी शिव बाबा कहते हैं और बाबा को ब्रह्मा बाबा कहते हैं, शिव बाबा ने मैसेज दिया कि अब भारत में चलना है और मैसेज दिया कि तुम्हें एक पहाड़ी पर बैठकर तपस्या करनी है। उसी प्रेरणा को लेकर इस स्थान को खोजा गया और 1950 में दिवाली के आसपास ये सारे भाई बहने, जिसमें 380 थे, 380 भाई बहनों ने 37 में अपने जीवन को डेडिकेट कर दिया था इस कार्य के लिए। ये सभी शिप में बैठकर भारत में आए, ओखा बंदरगाह है, वहां से ट्रेन से आबू में आए और हेड क्वार्टर बनाया गया माउंट आबू को। यहां से बाबा ने जितने भी भाई बहने थे सभी को आदेश दिया कि भारत के भिन्न भिन्न शहरों में जाओ और ये ज्ञान योग सभी को सिखाओ। वहां से ये कार्य शुरू हुआ। 18 जनवरी 69 को बाबा ने अपने देह का त्याग किया। बाबा ने अपने जीवन में बहुत जबरदस्त तपस्याएं की थी, जब से विशेष रूप से 50 से वो माउंट आबू में आ गए थे, 50 से और 68 पूरे 18 साल बाबा ने गहन तपस्या में व्यतीत किए। मुझे याद है हमारा ग्रुप दिल्ली से उधर पांडव भवन में आया तो वही आश्रम था, आप देखेंगे वहां बगीचा है एक, उसमें बाबा की झोपड़ी थी, अब भी है। बाबा अपनी झोपड़ी में बैठे थे, ऊपर अंगूरों की बेले थी, बिल्कुल ग्रीनरी थी, शाम का समय था, मैं वहां था, खड़ा था, हमें जो रूम दिया गया था वो उसके पास ही ऊपर में था। मैं एक चीज महसूस कर रहा था जिसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कि जैसे उस झोपड़ी से साइलेंस के वाइब्रेशंस, गहन तपस्या के वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हों, इतना आकर्षण था कि वहां चले जाएं, लेकिन किसी को भी जाने की हिम्मत नहीं होती थी। बाबा अपनी झोंपड़ी में अकेले गहन तपस्या में मगन रहते थे। मैं आपको अपनी ओर से कह दूं, मैं बचपन से सुनता आता था कि भारत में कुछ ऐसे ऋषि भी हुए हैं जो चलते फिरते समाधिस्थ रहते थे। आप में से कुछ लोगों ने ये शब्द सुना होगा, समाधिस्थ माना योग युक्त, परमात्मा के स्वरूप पर स्थिर। वो स्थिति ब्रह्मा बाबा की थी, वो शरीर में रहते भी ऐसे रहते थे मानो इसमें नहीं रहते हैं। मैंने उनके अंदर जो कुछ क्वालिटीज देखी, एक बहुत बड़ी चीज देखी, मैंने ही नहीं लाखों ने देखी, संपूर्ण ईगोलेस। बाबा के चलने में, बोलने में, देखने में, व्यवहार करने में किसी को भी कहीं भी क्षणिक भी तनिक भी ईगो दिखाई नहीं देता था। ये सभी बाबा की विशेष स्थिति का वर्णन करते थे। तो बहुत तपस्या के बाद जिन्होंने अपने जीवन में संपूर्ण त्याग किया था, त्याग ऐसा था कि अपने लिए जिन्हें कुछ भी चाहिए नहीं था, ऐसा त्याग, सब कुछ बच्चों के लिए। उनकी फीलिंग्स ही सबके लिए ऐसी थी जैसे वो बाप हैं और बाकी सब उनके बच्चे हैं। प्यार भी ऐसे ही दिया जैसे एक बाप सच्चे दिल से अपने बच्चों को प्यार देता है। तो जैसे इस फुलवारी को अपने प्यार से, अपने ज्ञान से, अपनी शुभ भावनाओं से सींचा था उन्होंने, इस फुलवारी में सुगंध भरी थी जिसका दिग्दर्शन आज आप सब कर रहे हैं। बाबा ने देह त्याग किया 18 जनवरी 69 को। तब से ईश्वरीय विश्वविद्यालय की हेड बनी हमारी दो बहनें, जो दोनों ही अब नहीं हैं, एक थी दादी प्रकाशमणि, 3-4 साल पहले शरीर छोड़ा है, और दूसरी थी दीदी मनमोहिनी। बहुत सुचारू रूप से दोनों ने संचालन किया इस कार्य का। जब बाबा यहाँ थे हमारे 150 सेंटर्स थे सारे भारत में, और आज सारे वर्ल्ड में जिसमें लगभग 130 देशों में हैं, 9000 के लगभग सेवा केंद्र हैं, गांव-गांव में ये सेवा केंद्र खुले हैं। विदेशों की सेवाएं हमारी शुरू हुई 1971 से, जब पहला डेलीगेशन लंदन में गया, फिर अमेरिका में गया, अफ्रीकन कंट्रीज में गया, चाइना में गया, जापान की तरफ गया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ गया, और ये सेवाएं चारों ओर प्रारंभ हुई। मैं आप सभी को कह दूं, जो ज्ञान यहाँ दिया जा रहा है वो किसी मनुष्य का ज्ञान नहीं है, वो किसी शास्त्र ग्रंथ का ज्ञान नहीं है, वो डायरेक्ट परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वही ज्ञान दिया है। मैं एक छोटे से अनुभव की बात कह दूं, कुछ साल पहले हमारे यहाँ बनारस का एक ग्रुप आया, ऐसे ही प्रोग्राम चल रहा था, एजुकेशनिस्ट का प्रोग्राम था, 3-4 प्रिंसिपल थे उसमें, 10 प्रोफेसर थे। मुझे कहा इन्हें पहाड़ी पर घुमा लाओ, उधर ही हमारे नजदीक में बहुत सुंदर पहाड़ियां। तो मैं उन्हें लेकर गया, उन्होंने मेरे से एक प्रश्न किया। देखिए प्रश्न बिल्कुल सुंदर था और मैंने उसका थोड़े से मैं उत्तर दिया। कहा हमें आपकी सब बातें बहुत अच्छी लगी हैं, परंतु आप जो कहते हो भगवान आता है, भगवान ने ये ज्ञान दिया है, इस पर हम विश्वास कैसे करें। सारे प्रोफेसर्स थे, प्रश्न उनका बिल्कुल ठीक था। आप भी बहुत इंटेलेक्चुअल्स यहाँ बैठे हैं, आपके मन में भी हमारी ये बात सुन के नेचुरल रूप से क्वेश्चन उठेगा, भगवान आता है, हमारी कल्पना है, हमारी भावना है, और इट इज ए ट्रुथ। ये क्वेश्चन उठना बड़ा नेचुरल है बुद्धिमान लोगों के मन में। तो मैंने भी उनको, मैं डिबेट करना नहीं चाहता था, न मैं तर्क देना चाहता था, मैंने एक सिंपल बात कही कि आपको एक बहुत बड़ी बात सुनने को यहाँ मिली है कि भगवान आकर ज्ञान दे रहा है, भगवान इस युग को बदलने का अपना दिव्य कार्य कर रहा है, आप विश्वास न करो, आप आकर देख लेना ना, उस चीज को आप स्वयं अपनी आंखों से देखो। आप सबको मैं यही कहूंगा, आप स्वयं उसको अपनी आंखों से देखो, अपने ज्ञान के विवेक के थर्ड आई से उसको रियलाइज करो, बाद में एक्सेप्ट करना। उसके लिए हमारे यहाँ एक शर्त है कि 8 मास तक इस ज्ञान की संपूर्ण स्टडी करें, अपने जीवन को पवित्र बनाएं, राजयोग का अभ्यास करें, फिर यहाँ आकर आप देख सकते हैं कैसे भगवान आते हैं। भगवान कोई एक कमरे में नहीं आते कि चुपचाप आते हैं और कुछ कह के चले जाते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं के बीच में आते हैं। आप हमारी ये सभा तो बहुत छोटी है, 25,000 की सभा के बीच में, 20,000 की सभा के बीच में, जिसमें कितने ही वकील बैठे होते हैं, कितने प्रोफेसर्स, कितने साइकोलॉजिस्ट, कितने डॉक्टर्स, भारत के भिन्न भिन्न इंटेलेक्चुअल वर्गों के लोग बैठे रहते हैं, तो उसे देखा जा सकता है। भगवान निराकार है, वो आता है, ज्ञान देता है। उसमें मुख्य चीज है वो सभी को पवित्र बना रहे हैं। देखिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों को बिना परमात्म शक्ति के कोई जीत नहीं सकता। और आप हमारे यहाँ घूम फिर के देख लो, लोगों से बात करके देख लो, जितने भी भाई यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, आप सब उनका इंटरव्यू लेकर देख लो, सभी ने अपने जीवन को पवित्र बना लिया है, सभी अपने जीवन से मनोविकारों को छोड़ने का, संपूर्ण बाकी जो रहे हैं उनको संपूर्ण छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हमारी ये सेवाएं बढ़ी, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज की, भारत के बड़े बड़े अच्छे अच्छे सन्यासियों को, इंटेलेक्चुअल्स को, फिलोसोफर्स को, पंडितों को, बनारस के पंडितों को, हरिद्वार, ऋषिकेश और साउथ के बहुत सारे महामंडलेश्वरों को, जगत गुरु शंकराचार्यों को यहाँ पर प्रोग्राम्स में बुलाया गया। सबने आकर अच्छी तरह देखा हम क्या हैं, हम क्या कार्य कर रहे हैं। UN से भी ये इंस्टीट्यूशन जुड़ गया, बहुत साल पहले ही जुड़ गया था, अब से 30 साल पहले ही NGO के रूप में कार्यरत है, वहाँ पर भी हमारी सेवाएं चलती हैं। आप हैरान होंगे, हमारे यहाँ हर वर्ष लगभग 10,000 विदेशी भाई बहने आते हैं, उनका प्रोग्राम होता है दिसंबर से लेकर मार्च तक। आप हैरान होंगे, सभी ने अपने जीवन को सात्विक बना लिया है, सभी वेजिटेरियन बन गए हैं, सभी ने अपने जीवन में पवित्रता अपना ली है, कोई स्मोकिंग का शौक नहीं, कोई ड्रिंकिंग नहीं रही है, बिल्कुल सात्विकता अपना ली है। हमारे भारत के लोग, हमारे आबू के लोग जब उन्हें देखते हैं तो हैरान होते हैं कि ये लोग नॉन वेज ही जिनका जीवन है, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग तो बहुत देशों में ऐसा है जैसे हम पानी नेचुरल पीते हैं। उन सब ने अपने जीवन को पवित्र बना लिया है, तो ये बहुत बड़ी सेवा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा समाज की हो रही है। ये डायरेक्ट परमात्म कार्य है, हम सब इसमें केवल निमित्त हैं। इस समय आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में लगभग 16,000 भाई बहनों ने अपने जीवन को डेडिकेट किया हुआ है। बहुत सारी बहनें हमारे सेंटर्स पे रहती हैं, जहाँ जहाँ बड़े सेंटर्स हैं, हेड ऑफिसेज हैं, वहाँ पर भाई भी उनके साथ रहते हैं। सबका जीवन बहुत अच्छी तरह पवित्रता की राह पर चल रहा है। ईश्वरीय मिलन रोज होता है, आप भी चाहें तो राजयोग के माध्यम से रोज प्रभु मिलन का स्वाद चख सकते हैं। लास्ट में मैं एक बात, सुंदर बात, इससे हटकर आपके जीवन के लिए आप सबको कहना चाहता हूं। आप उसको अपने प्रोफेशन में भी यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। हम सभी के पास, आप बहुत ध्यान से इस बात को रिसीव कर लें, आप अपने बच्चों को सिखाएं, अपने पारिवारिक जीवन को बंधनों से, विघ्नों से, समस्याओं से मुक्त कर सकते हैं इस सिद्धांत से। रोज जब हम सवेरे उठते हैं तो आंख खुलने के बाद हमारे पहले 10 मिनट हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम हमारा कॉन्शियस माइंड साइलेंट होता है, तो सब कॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव रहता है और सब कॉन्शियस माइंड में बहुत जबरदस्त पावर है। उस समय कोई विजन या कोई थॉट अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे देंगे तो वो उसे रिसीव कर लेगा और वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा। कल से आप शुरू कर सकते हैं। उठते ही सबसे पहले हम क्या सोचें, जो हमारा वेरी फर्स्ट थॉट होगा, समझ लें वो हमारे जीवन का निर्माण करता है। आप जीवन में बहुत सफलता चाहते हैं तो उठते ही संकल्प करना, मैं भगवान का बच्चा हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता के द्वार खुल जाएंगे। आपको कभी लगे कि आपका भाग्य आपको साथ नहीं दे रहा है, उठते ही आप विचार करना, मैं भगवान का बच्चा हूँ, इस संसार में बहुत भाग्यवान हूँ, मेरा भाग्य खराब है ये नहीं, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, तो आपका भाग्य खुलने लगेगा। आपको जीवन में बहुत बीमारियां आ गई हैं शरीर में, आप उठते ही संकल्प करना, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर तो मेरा रथ है, मैं निरोग हूँ। ये पॉजिटिव अप्रोच है जो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं। आप कोई विजन भी दे सकते हैं, आपके सामने आज कोई केस है, आप किसी केस को लड़ रहे हैं, आप उसकी सफलता के लिए भी ऐसे ही विजन अपने सबकॉन्शियस माइंड को अर्ली मॉर्निंग 10 मिनट्स के अंदर दे सकते हैं। इससे आपको जीवन में बहुत आनंद आएगा। मेरी आप सबके लिए ये शुभ भावना है। आपको यहाँ अभी थोड़ा सा ही बताया जाता है, मैं लास्ट लाइन बोलता हूँ फिर हम समाप्त करेंगे। आप सभी भाई बहने जो यहाँ आए हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए आप देव कुल की महान आत्माएं हो। सुना सभी ने? साधारण मनुष्य नहीं, केवल वकील जज नहीं, देव कुल की महान आत्माएं हो। परमात्मा से मिलना आपका अधिकार है, क्योंकि वो पिता है। पिता अगर अपने बच्चों से मिलता ही ना हो तो उसे बच्चे पिता कैसे मानेंगे? तो उससे मिलना भी आपका अधिकार है। और मेरी ये शुभ भावना है, आप अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को इमर्ज करें, उसको पहचान लें। आपके पास बहुत पावर्स हैं, उन्हें यूज करें। याद रखेंगे, मैं ऑलमाइटी की संतान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। और बस आखिरी लाइन में आपको कहूंगा, अब जीवन में हारता वही मनुष्य है जो अपनी शक्तियों को भूल जाता है। सबके पास बहुत शक्तियां हैं, उसे भूलेंगे नहीं, राजयोग उसमें वृद्धि करेगा। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। अभी हम सभी 3 मिनट डीप साइलेंस में बैठेंगे और जस्ट सिंपल प्रैक्टिस के ऊपर से गुड वाइब्रेशंस हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, जैसे गुड वाइब्रेशंस की बरसात हो रही है। बिल्कुल डीप साइलेंस में चलेंगे फॉर 3 मिनट्स ओनली।
भगवान हमारा खुशियों की बरसात है। हो गया भगवान हमारा खुशियों की बरसात है। ढूंढते थे जिसको दल दल, ढूंढते थे जिसको दल दल, वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। हो गया भगवान हमारा खुशियों की बरसात है। हो गया भगवान हमारा खुशियों की बरसात है।